योगेन धाता सहना त्रिलोका पश्याम्यमस्मिन् भवेश मूर्ता रूपं तवेतं पुरुषरसभेजम् श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण शब्दार बोले रूपम रूप तव तुम्हारा एतत् यह पुरुष ऋषभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ एज्यं पूज्य श्रेय चरम कल्याण अर्थ भी कामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा वैदिक वैदिक आदेशों के अनुसार तांत्रिकेण नारद पंचरात्र जैसे तंत्रों के अनुयायियों द्वारा अनुभव किया गया योगेन योगाभ्यास द्वारा धातः हे परम नियंता सह साथ नह हम देवताओं को त्रिलोकान तीनों लोकों को नियंत्रित करने वाले पश्यामि प्रत्यक्ष देखता हूँ अमुस्मिन् आप में ओह ह पूर्णतया प्रकट विश्वमूर्ता विश्वरूप आप में। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए हे पुरुष श्रेष्ठ हे परम नियंता जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। हे प्रभु हम आप में तीनों लोकों को देख सकते हैं। तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। इसमें दो शब्द संबोधन के हैं। इस श्लोक में दो शब्द संबोधन के हैं। संबोधन मतलब पुकारना, पुकारने के लिए भगवान को जो है पुकारा है, दो शब्दों से पुकारा गया है। कौन से दो शब्द हैं कौन बताएगा? विश्वमूर्त नहीं, विश्वमूर्त संबोधन का नहीं, विश्वमूर्ति होता है जैसे है ना विश्वमूर्ति गीता में है। कैसा है श्लोक वो नहीं नहीं विश्वमूर्ति सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ति अर्जुन ने कहा ना गीता में सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ति। तो विश्वमूर्ति ये शब्द संबोधन का है, विश्वमूर्त नहीं है। विश्वमूर्त का मतलब विश्वमूर्ति में, तो संबोधन का नहीं है, है ना। संबोधन का एक है पहली पंक्ति में पुरुषर सब एक ये संबोधन का है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, एक तो ये है। और दूसरा संबोधन का धाता, धाता परम नियंता। तो दो शब्द जो है संबोधन के हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ और हे परम नियंता, ये दो शब्द संबोधन के हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें रूपम तव एतत्, आपका ये रूप, आपका ये रूप, रूपम तव एतत्। पुरुषर्षभ तो संबोधन का है, वो अलग कर सकते हैं और शुरू में भी इसको ले जा सकते हैं। तो आपका ये रूप, रूपम तवेतत पुरुषर्षभ इज्यम, इज्यम का मतलब है पूजा के योग्य, पूजनीय। आपका ये रूप जो है पूजनीय है, किसके लिए? श्रेयोर्थी जो श्रेय की कामना करते हैं। एक तो प्रेय होता है, दूसरा श्रेय होता है ना। तो जो प्रेय की कामना करते हैं वो दूसरे देवताओं की पूजा करेंगे, है ना। कामस्तना प्रपद्यंत ने देवता, तो अन्य देवताओं की तो प्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं। श्रेय जो श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए आपका ये रूप पूजनीय है। श्रेय और फिर वैदिक तांत्रिक केण है, वैदिक वैदिक केण है और तांत्रिक केण है, योगेन है। तो वैदिक योग के द्वारा उपाय, योग का मतलब उपाय है, तो वैदिक उपाय के द्वारा जो श्रेय की कामना करते हैं या जो तांत्रिक उपायों के द्वारा श्रेय की कामना करते हैं, तो वैदिक उपायों के द्वारा का मतलब है श्रवण कीर्तन की विधि है, और तांत्रिक उपायों के द्वारा का मतलब है पांचरात्रिक विधि, पांचरात्रिक विधि के द्वारा है ना, भागवत विधि के द्वारा और पांचरात्रिक विधि के द्वारा। तो वैदिक विधि का मतलब भागवत विधि के द्वारा जो श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका ये रूप उनके लिए भी पूजनीय है, और जो तांत्रिक विधि के द्वारा श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं पांचरात्रिक विधि पूजा अर्चना, तो उनके लिए भी आपका ये रूप पूजनीय है। मतलब निराकार, निराकार नहीं, जो निराकारवादी है तो वो श्रेय नहीं प्राप्त करेंगे, जो भगवान को निराकार, आपका ये रूप पूजनीय है, आपका ये रूप जो है पूजनीय है। श्रेयोर्ति फिर वैदिक तांत्र केण योगे न धाता, तो धाता अलग हो गया, संबोधन का शब्द है। सहनस्त्र लोकान पश्यामी, पश्यामी का मतलब देखता हूं, देखता हूं एक वचन है, पश्यामी एक वचन है, देखता हूं। कौन कह रहा है ये श्लोक? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो एक वचन है, इसलिए एक वचन है, क्योंकि जितने दूसरे देवता लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, उनकी आंखें चौधियां गई, क्योंकि भक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई देख सकता है। भगवान ने कहा ना, भक्त्या तो न्यास सकते हम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम तत्व प्रवेशुम चा परंतप, तो ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं, इन दूसरे देवता नहीं देख पा रहे हैं। दूसरे देवता लोग क्या देख पा रहे हैं? प्रकाश देख पा रहे हैं, और उसमें उनकी आंखें चौंधिया रही हैं, प्रकाश के अंदर भगवान का जो रूप है वो नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जो भक्त नहीं है वो क्या कहते हैं? ईश्वर प्रकाश है, गॉड इज लाइट। तो कोई व्यक्ति अपने को अंधेरे में छिपाता है, लेकिन भगवान अपने को छिपाते हैं प्रकाश के अंदर। आप अपने को छिपाएंगे तो कहीं अंधेरे स्थान में जाएंगे छिपने के लिए, ये भगवान छिपते हैं अपने प्रकाश के अंदर। तो जो भक्त हैं उनके पास भक्ति के नेत्र नहीं है, तो प्रकाश के अंदर भगवान को नहीं देख पाते हैं, उनके आगे चौंधियां जाती हैं। तो जितने देवता हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए स्तुति भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं प्रकाश के अंदर भगवान का एक रूप। भक्ति विलोचनेन, भक्ति के नेत्रों से देखते हैं। वो कैसा श्लोक है? भक्ति विलोचन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति के नेत्रों से ही। तो भक्ति के जब नेत्र आपके विकसित हो जाएं, उनमें प्रेम का अंजन फिर लगाया जाए, तब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय विलोकयन्ति, तो संत लोग सदा हृदय में विलोकयन्ति यानी देखते हैं। जब श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, तो आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास भक्ति के नेत्र हैं और प्रेम का अंजन भी लगाया हुआ है, तो वो देख पा रहे हैं। इसलिए पश्यामी शब्द आया है, किसमें? एक वचन में या बहुवचन में? एक वचन में पश्यामी, अहम पश्यामी है ना। अर्जुन भी कहा पश्यामी पश्यामी पश्यामी, 11वें अध्याय में अर्जुन ने बार बार कहा पश्यामी यानी देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं। भगवान ने बार बार कहा पश्य पश्य पश्य, देखो देखो मेरा विस्तृत देखो। अर्जुन ने जब देखा तो पश्यामी पश्यामी अनेक श्लोकों में अर्जुन ने कहा है कि मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं पश्यामी, तो पश्यामी क्या क्या है? कि सहनस्त्र लोकान, हम देवताओं के सहित तीनों लोकों को मैं देख रहा हूं। तो नहा का मतलब है बहुवचन में हम सब, पश्यामी एक वचन में है कि मैं देख रहा हूं, सह नस हम सब देवताओं सहित तीनों लोकों को मैं देख रहा हूं आपके विश्व मूर्ति में, आपके श्री रूप में देख रहा हूं। तो नहा बहुवचन है, बहुवचन क्यों है कि ब्रह्म जी अकेले नहीं है, सब देवताओं के साथ है, लेकिन देखने वालों में केवल एक वचन ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी केवल देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, बाकी लोग तो कहाँ देख पा रहे हैं, प्रकाश ही देख पा रहे हैं, तो भगवान का रूप ही नहीं देख सकते, फिर भगवान के रूप के अंदर तीनों लोगों को देखने की बात कहां से, वे तो भगवान का रूप ही नहीं देख पा रहे हैं, फिर तीनों लोगों को देखने की बात तो और दूर है कि भगवान के अंदर, तो ब्रह्म जी देख रहे हैं। पश्यामी अमुष्मिन हा विश्व मूर्त, अमुष्मिन का मतलब इसी रूप में, आपके इसी रूप में, उ का अर्थ क्या है, आहा, उ एक आश्चर्य वाचक शब्द है, आश्चर्य, तो कभी आश्चर्य से आप ही बोलते ना, आ आ बोलते हैं, ओह ओ आ आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आश्चर्य, क्या बोलते आ, ओ, ओ, अंग्रेजी में ओ, वाओ वाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं वाओ, पश्यामि मैं देख रहा हूं, वो का मतलब है आ, ओ, और हा का मतलब है स्पष्ट रूप से, हा हा का मतलब है स्पष्ट रूप से, तो मैं देख रहा हूं, और वो भी ऐसे नहीं देख रहा हूं कि कुछ देख रहा हूं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, है ना। और भगवान ने भी अर्जुन से कहा था यत चान्यत दृष्टों में छसी, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो वो सब देखो, जो नहीं देखना चाहते वो भी देखो, जिसको अभी तक कभी नहीं देखा है वो भी देखो, पश्यादित्यान वसून रुद्रान, आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, पश्यादित्यान वसून रुद्रान, अश्विनो मरुतस्तथा, अश्विनो कुमारों को देखो, मरुदगणों को देखो, बहुने दृष्टि पूर्वान, और बहुत से जो कभी नहीं देखे हैं ऐसे आश्चर्यों को भी देखो, और फिर कहा कि यह चान्य दृष्टि में चले, और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो भी देखो, भूतकाल का कुछ देखना चाहते हो, वर्तमान काल का कुछ देखना चाहते हो, भविष्य काल का देखना चाहते हो तो वो भी देखो, 500 साल पहले इसी स्थान में कौन सी बिल्डिंग थी, कौन लोग रहते थे, वो देखना चाहते हो वो भी देख लो, आपके घर में 500 साल पहले कौन सी बिल्डिंग थी, कौन लोग रहते थे, क्या करते थे, वो भी देख सकते हो, तो भविष्य भी देख सकते हो, भविष्य काल में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आपके इसी रूप में मैं सब कुछ देख रहा हूँ, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की वैदिक मंत्रों का कथन है, यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। तो प्रभुपाद वैदिक मंत्र की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें शब्द आया है क्या, वैदिक योगे ने, जो वैदिक मंत्रों के द्वारा जो परम श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका ये रूप है, आपका ये रूप पूजनीय है, पूजा के योग्य है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक मंत्रों का कथन है, यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति, जिनको जानने से सब कुछ है, जाना जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है, जिनको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, जैसे कोई मास्टर की होती है ना, तो आपको मास्टर की मिल गई तो जितने घर के ताले सब खुल जाएंगे उसी से, अलग अलग चाबियों की जरूरत नहीं, नहीं तो एक ताले की एक चाबी, दूसरे ताले की एक चाबी, अलग अलग चाबियां होती हैं, और मास्टर की तो एक चाबी है सभी ताले खुल जाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या है, वैदिक मंत्र क्या है, यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवति, तो एक को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, साइंस के अंदर भी कितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, है ना, फिजिक्स का अलग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसी प्रकार से कला आर्ट, आर्ट के भी कितने डिपार्टमेंट हैं, टेक्सटाइल का अलग डिपार्टमेंट है, तो कितने डिपार्टमेंट हैं, लेकिन एक कृष्ण को जान लें तो आप सब कुछ जान लेंगे, सब कुछ, क्योंकि मूल वस्तु जो है, जो उसका जो मूल जो सिद्धांत है वो आप जान सकते हैं, और प्रभुपाद जानते थे, इसलिए सबको उन्होंने पराजित किया, कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आ जाए, कोई बहुत बड़े से बड़ा लेखक आ जाए, कोई बहुत बड़े से बड़ा विचारक आ जाए, फिलोसफर, सबको प्रभुपाद ने हराया, क्योंकि प्रभुपाद सब जानते थे, कृष्ण को जानते हैं तो प्रभुपाद सब कुछ जानते हैं, सबको प्रभुपाद ने हराया, सब हारे प्रभुपाद के सामने, और सबने सिर झुकाया प्रभुपाद के सामने। तो यहां वैदिक मंत्र है, यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति, जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है, या जब वह उनका साक्षात दर्शन करता है, तो दो प्रकार के दर्शन है, एक तो ध्यान में दर्शन और दूसरा साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन में आमने सामने बातचीत भी होती है, जैसे मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझसे बात करेंगे, है ना, लेकिन ध्यान में जो दर्शन होता है उसमें बातचीत तो नहीं होती, केवल दर्शन होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है, या जब वह उनका साक्षात दर्शन करता है, तब वह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है, हर चीज से अवगत हो जाता है। और मुख्य रूप, मुख्य बात क्या है कि हर चीज से अवगत हो जाता है, यहां कोई कोई भी स्थान नहीं है रहने लायक, उसको सब स्थान मालूम हो गए, क्या हर जगह जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, आपकी इच्छा होती है कि इधर भी देखो, अमेरिका में क्या है, फ्रांस में क्या है, यूरोप में क्या है, चीन में क्या है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, है? लेकिन वो जान लेता है, क्या जान लेता है, सब कचरा, सब कचरा है, मल मूत्र का स्थान है, कहीं कोई भी स्थान सही नहीं, जान लिया उसने, जिस तरह से जानना सबसे अच्छा है, क्योंकि आप बहुत डिटेल जानते हैं कि भाई यहाँ ऐसे मकान है, ये है, वो है, लेकिन सब क्या है, नष्ट होने वाले हैं, नश्वर हैं, क्या है, हर जगह जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, तो आपने सबको जान लिया, और क्या जानना, सब बेकार है ना, तो जानता है, सब कुछ जानता है। जैसे गांधी जी जब इंग्लैंड में गए तो बड़ा अच्छा देखा, इंग्लैंड में गए गांधी जी तो बड़ा अच्छा उनको लगा, कितना अच्छा, सब साफ सुथरे हैं, गाड़ियां हैं, है ना, और घर मकान सब अंदर बाहर बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा गांधी जी से, आपको कैसा लगा इंग्लैंड? गांधी जी बोले, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं हर भारतीय को इसी प्रकार की सुविधा रहने की मिले। प्रभुपाद गए इंग्लैंड, प्रभुपाद से पूछा, आपको कैसा लगा? तो प्रभुपाद गए, सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, यहाँ क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब प्लास्टिक और कागज है और कुछ है ही नहीं है। प्रभुपाद जानते क्या है, सब बेकार है। और फिर प्रभुपाद ने लंदन को कहा, नरक है, हाँ, तो बड़े बड़े जो है अक्षरों में समाचार के मुख्य पृष्ठ में छपा कि स्वामी जी से लंदन इज हेल, लंदन नरक है। तो प्रभुपाद जानते हैं सब नरक है, क्योंकि उनको ज्ञान है भगवान के रूप का और भगवान के धाम का, तो भगवान के धाम में यद गत्वान वर्तनते तद धाम परम मम, जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। तो जिसको वो ज्ञान है तो उसको सब कुछ ज्ञान हो गया। यहाँ सब क्या है, कूड़ा करकट है, मृत्यु का ही स्थान है, कुछ भी स्थान, कोई भी स्थान जो है रहने लायक नहीं है, बहुत भयानक स्थान है। उसकी इच्छा नहीं होती इधर घूमो उधर घूमो, कहाँ इधर जाओ उधर जाओ, भाई देख लो किसी बच्चे की 3 दिन में मृत्यु होने वाली थी, तो उसके जो शुभचिंतक थे वो उसको 3 दिन में उन्होंने पूरी दुनिया दिखाई कि बेचारी देख ले, पूरी दुनिया देख ले, 3 दिन में मरने वाली है। परसे महाराज की मृत्यु 7 दिन में होने वाली थी, तो कहीं नहीं घूमे, वो गंगा जी के तट पर गए, श्रीमद भागवत सुना, 7 दिन और वैकुंठ चले गए। क्या करना देख करके, यहां रह करके क्या करना है, सब बेकार है। तो वो जानता है, तो यहां पर वैदिक मंत्र है, यस्मिन विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। तो ये तो असली बात है जानने की। क्या जरूरत है कि मलमूत्र का स्थान है तो आप चख करके देखो कि कैसा उसका स्वाद है, चखने लायक है ही नहीं मल, ये देखने लायक भी नहीं है, सूंघने लायक भी नहीं है, तो सूंघ सूंघ करके देखो, चख चख करके देखो कैसा स्वाद है, कोई जरूरत नहीं जानने की। तो आप अगर जानते हैं कि मल है ये, ये बहुत जो है गंदी चीज है, तो इसको जो है चखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से वो जो भक्त है, जो भगवान के रूप को जानता है, भगवान के लीलाओं को, भगवान के धाम को जानता है, तो वो जानता है कि बाकी सब जो है ना, ये भौतिक जगत के जो रूप हैं और जो नाम हैं, ये सब ध्वस्त होने वाले हैं। तो तत्व जानता है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, है ना। और बाकी जो डिटेल्स है वो अलग चीज है, आप इतना डिटेल्स जानते हैं लेकिन तत्व नहीं जानते हैं उस चीज का, सब बेकार है। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है, या जब वह उनका साक्षात दर्शन करता है, तो वह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। तो प्रत्येक वस्तु से अवगत होने का मतलब यही है कि कोई भी चीज नहीं ब्रह्मांड में जो कुछ देखने लायक हो या भोगने लायक हो, कुछ आनंद की कोई चीज है नहीं यहां। इसका यह मतलब थोड़ी है कि उसको जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पूरी नॉलेज हो जाएगी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी नॉलेज हो जाएगी, ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। लेकिन वो प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है, और तत्व उसको तत्व मालूम हो गया कि इसका तत्व क्या है, तो फिर क्या है, ये ग्रहण करने लायक कुछ है ही नहीं, सब कुछ छोड़ने लायक है, छोड़ो क्या करना। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो मनीषी हैं कर्म से उत्पन्न जितने भी फल हैं त्याग करके, जन्म मृत्यु, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम है, जन्म के बंधन से छूट करके वैकुंठ के पद को जाते हैं। तो सब बंधन है, तो उसको जानने की क्या आवश्यकता है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं निस्संदेह उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, कुछ भी अज्ञात नहीं। आगे, इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु उस भक्त को पूरी तरह प्रकट हो जाती है जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अतः भगवत गीता का 4:34 उपदेश है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं। तो यहां पर तत्वदर्शिना शब्द आया है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी है तत्वदर्शी है। तो तत्वदर्शी का मतलब जो तत्व, जिन्होंने तत्व देखा है, तत्व मतलब जो जगत भौतिक जगत है इसका तत्व क्या है, है ना। और कृष्ण का तत्व क्या है, जय कृष्ण तत्व वेता श्री गुरु हो, जो कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो हर चीज का तत्व जान लेता है, क्या हर चीज का। आगे प्रभु लिखते हैं ब्रह्म जी ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महाजन हैं, कैसे ज्ञान ना तत्व दर्शन ब्रह्म जी। तो प्रभुपाद ने ब्रह्म जी की बात क्यों कही, कौन बताएंगे, क्योंकि ब्रह्म जी कह रहे हैं श्लोक, और ब्रह्म जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं पश्यामि, और इसलिए गीता का श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी तो ब्रह्म जी जो है देख रहे हैं, तीनों लोगों को देख रहे हैं, सब देवताओं से तीनों लोगों को देख रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि अगर भगवान की पूजा करते हैं तो अपनी भी पूजा हो जाती है और सब देवताओं की भी पूजा हो जाती है और तीनों लोगों की पूजा हो जाती है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं है? कि हम सब देवताओं के सहित तीनों लोगों को मैं आपके ही विश्व मूर्ति में देख रहा हूं, आपकी विश्व मूर्ति में देख रहा हूं। तो ये तत्व है, जैसे वृक्ष की जड़ में आपने पानी डाला तो वो पानी जो है वृक्ष की सब शाखाओं में चला गया और सब पत्तियों में फल फूल सब में चला गया, तो ये तत्व है। अब इसका डिटेल्स आप नहीं जानते कैसे जाता है, तो बहुत मुश्किल है समझना, इसका साइंस समझना बहुत मुश्किल है कि आपने जड़ में पानी डाला और वो कैसे जाता है, या भोजन आपने पेट में डाला तो कैसे पूरे शरीर में जाता है, कैसे पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, तो ये हम नहीं जान सकते। ये तत्व आपने जान लिया, और तत्व क्या है कि भोजन आपको पेट में जाना, पेट में पहुंचाना है, कान के अंदर नहीं पहुंचाना है, या नाक के छेद में नहीं डालना भोजन, आंखों के अंदर नहीं घुसेड़ना भोजन। तो ये तत्व है, वृक्ष को पूरे वृक्ष में जल देना है तो एक एक पत्ती को जल नहीं देना है, आप केवल जड़ में पानी डालिए और पूरे वृक्ष में पानी जाता है, अपने आ जाता है। तो इसे कहते हैं सत्य का दर्शन करना, तत्वदर्शिना। तो जो ज्ञानी तत्वदर्शी हैं जो तुम्हें ज्ञान को उपदेश देंगे। आगे प्रभु लिखते हैं ब्रह्म जी ऐसे स्वरूप सिद्ध महाजन है, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। तो प्रभुपाद ने श्लोक की एक पंक्ति उद्धृत की है, स्वयंभूर नारद शंभु कितने हो गए, तीन, कुमार कपिलो मनु कितने हो गए, तीन, छह हो गए। तो एक पंक्ति में छह नाम है, दूसरी पंक्ति में भी छह नाम है, किसको पता है, हाँ बताइए, अब हाँ आप बताइए, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया शकिर वयम, है ना, बारह महाजन। तो ये बारह महाजन हैं और प्रत्येक पद में तीन तीन नाम है, चार पद हैं श्लोक के, तीन तीन नाम है, तो तीन चौको बारह, तो बारह नाम हो गए। बड़ा सरल तरीका है बारह नामों को जानने का। तो उनमें से सबसे पहले नाम किसका है, स्वयंभू ब्रह्मा जी का। आगे प्रभु ने कहा अति मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा से चली आने वाली शिष्य परंपरा को स्वीकार करे। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा से चली आने वाली शिष्य परंपरा को स्वीकार करे, तभी वह भगवान को पूरी तरह समझ सकेगा। यहां पर विश्वमूर्त शब्द संकेत करता है कि भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है, जो उनकी पूजा करने में समर्थ है वो प्रत्येक वस्तु को उनमें और प्रत्येक वस्तु में उनको देख सकता है। तो प्रत्येक वस्तु को उनमें देख सकता है, तो भगवान की पूजा करता है तो सबकी पूजा हो जाती है, और प्रत्येक वस्तु में उनको देखता है, इसलिए किसी का अपराध नहीं करना, प्रत्येक वस्तु में भी भगवान, भगवान मैं प्रत्येक व्यक्ति है, मैं साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी भगवान है, इसलिए किसी का अपराध नहीं करना है। तो यहां प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस श्लोक में जो हिंदी पद्यानुवाद है वो इस प्रकार से विष्णुप्रिया देवी ने किया है निष्कल्याण कामी साधक आपके इस स्वरूप की वेदोक्त पांच रात्रोक्त विधि से उपासना करें पुरुषोत्तम की। हे मेरे भी रचयिता प्रभु विष्णुमय तब स्वरूप में सब देवों सहित मुझको त्रिलोक के दर्शन हो रहे। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक पर। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी, हैंड माइक है, हैंड माइक चालू कर दिया।
शास्त्रों में इनका कितना प्रेजेंस है? और हम ज्यादातर देखते हैं जैसे तंत्र गलत उपयोग में आते हैं, गलत प्रकार से उसको यूज किया जाता है, तो वैष्णवों के लिए कैसे उपयोगी है?
आपका प्रश्न है कि वेदों में जो भगवान की पूजा बताई गई है,
यहाँ पे श्लोक में तंत्र शब्द आया,
तंत्र शब्द, हाँ,
तो मेरा प्रश्न है इस तंत्र तत्व को थोड़ा जानने की। ज्यादातर हम जैसे तंत्र का नाम सुनते हैं तो तांत्रिक और तंत्र विद्या,
हाँ 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 हाँ, तो तांत्रिक लोग हैं तो वो तो भक्ति से बिल्कुल दूर हैं,
तो क्या
तो तांत्रिक लोग हैं,
क्या वो वेदों का पार्ट है? और ये जो तंत्र यूज हो रहा है ये तंत्र क्या उससे भिन्न है?
हाँ हाँ, ये जो है अलग है। मंत्र तंत्र यंत्र तीन शब्द होते हैं। मंत्र का मतलब है जो मन की रक्षा करे उसे मंत्र बोलते हैं, और तंत्र का मतलब है जो तन की रक्षा करे उसे तंत्र बोलते हैं, है ना। तो कभी तंत्र बांधा जाता है ना, शरीर की रक्षा के लिए तंत्र भी बांधे जाते हैं, तंत्र है? मंत्र तंत्र यंत्र। और यंत्र का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों का समुदाय है उसकी रक्षा करे। मंत्र तंत्र यंत्र, इस तरह से तीन शब्द होते हैं, है ना। तो तंत्र का मतलब है जो तन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, है ना। तो ये पांच रात्रिक विधि ये जो है तंत्र कहलाती है, है ना। तो मंत्र क्या है? आप श्रवण कीर्तन करते हैं, भागवत विधि, तो ये एक प्रकार का मंत्र है कि आप अपना मन लगाते हैं, है? सुनने में और सुनाने में, है? तो ये मंत्र, ये एक मंत्र है। और तंत्र पांचरात्रिक विधि में आप शरीर को लगाते हैं भगवान की सेवा में, तो ये जो है इसको तंत्र बोल सकते हैं। तो मंत्र और तंत्र दोनों, यानी भागवत विधि और पांचरात्रिक विधि, दोनों प्रभुपाद ने साथ साथ रखी है। और प्रभुपाद ने मतलब उसी प्रकार से माना है कि भागवत विधि और पांचरात्रिक विधि हम दोनों का अगर साथ साथ प्रयोग करें तो बहुत जल्दी हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। और जैसे रेलगाड़ी की दो पटरियां हैं, तो जब बराबर साथ साथ रहती हैं तो रेलगाड़ी उनमें चलती है। तो आपकी जो भक्ति की रेलगाड़ी है ये भागवत विधि और पांचरात्रिक विधि दोनों के ऊपर चलना चाहिए। तो प्रभुपाद ने दोनों विधियां दी हैं, भगवान की पूजा, मंगल आरती है, तो ये तंत्र है, और भागवतम क्लास बैठना ये मंत्र है। तो मंत्र और तंत्र दोनों, ठीक है ना। तो इस तरह से जो तांत्रिक विधि के द्वारा आप परम कल्याण पाना चाहते हैं, यहां पर बात यह है श्रेयोर्थ भी, जो श्रेय पाना चाहते हैं, है ना। तो प्रे अर्थ भी नहीं है, श्रेय और प्रे में अंतर है, है ना। प्रेयस क्या है? कि तुरंत कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, जैसे गीता में रजोगुणी सुख कहा है। तो रजोगुणी सुख क्या है? विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव। तो परिणाम विष के समान है लेकिन प्रारंभ में अमृत के समान है, विषयों का इंद्रियों से संयोग होता है। तत्सुखम राजसम स्मृतम, तो प्रेय। और श्रेय क्या है? सतोगुणी सुख, यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं, जो प्रारंभ में विष के समान हो परिणाम में अमृत के समान हो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आदि बुद्धि प्रसादजम, तो सात्विक सुख है ना। तो उसी को श्रेय कहते हैं, सात्विक सुख को, और राजोगुणी सुख को प्रेय बोलते हैं। तो श्रेय और तिथि का मतलब है कि वैदिक विधि के द्वारा भी जो श्रेय पाना चाहते हैं या तांत्रिक विधि के द्वारा भी जो श्रेय पाना चाहते हैं उनके लिए आपका ही रूप पूज्य नहीं है, जो श्रेय अर्थी है। ठीक है ना? ठीक है
जी। एक छोटा सा प्रश्न इससे रिलेटेड और है। तो प्रभु जी, जैसे प्रहलाद महाराज ने उदित किया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, उसमें अर्चनम शब्द भी आता है।
हाँ,
तो आप उस अर्चनम का पालन करेंगे तो वो पांचरात्रिक में आएगा या भागवत? हाँ,
पांचरात्रिक विधि है अर्चन। अर्चन पांचरात्रिक विधि है। तो नवदा भक्ति में वैसे तो बताया गया कि कोई एक भक्ति में भी लगा रहे 24 घंटे, लेकिन लगना 24 घंटे सिद्धांत ही है कि 24 घंटे आप लगे, एक किसी एक में ही लगे रहिए या 2, 3, 4, लेकिन 24 घंटे आप लगे रहिए। ठीक है? और कोई? हाँ हाँ, क्या है वो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्याद, वैष्णव सुपचो गुरु। किसे शुरू शुरू कैसे होता है? सत्कर्म निपुणो विप्रो, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव सपचो गुरु। तो सत्कर्म निपुणो, कोई ब्राह्मण है 6 प्रकार के कर्मों में निपुण है, और मंत्र और तंत्र में भी विशारद है, वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। और वैष्णव है लेकिन वो सुपच यानी चांडाल है, लेकिन वैष्णव है तो वो उसको गुरु बनाओ। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रश्न है?
बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया तत्व क्या है और मंत्र
सबको नहीं सुनाई पड़ता,
मंत्र और तंत्र में क्या भेद है और तत्व के बारे में आपने बताया। आपने बताया कि तत्व दर्शन
सबको सुनाई पड़ रहा है? नहीं,
आपने बताया कि तत्व का अर्थ है कि ये जाना कि केवल कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है, पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष में पानी चला जाता है, तो ये तत्वदर्शी हो गए। और कैसे जाते हैं उसके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सुनने में लगता है कि हाँ ये बात तो हम समझ गए, तो केवल इतना जानना कि उस जान के उसको अपने व्यवहार में उतारा तभी हम तत्वदर्शी कहलाएंगे।
तत्वदर्शी एवं यो वेति तत्वतः जन्म कर्म समय देवम एवं यो वेति तत्वतः, तो जो तत्व से जानता है कि मेरे जन्म कर्म देव्य हैं, तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर उन्हीं का ही चिंतन करेगा, उन्हीं की बात करेगा, उन्हीं की बात में सुनेगा। अगर तत्व से आपने जान लिया, जैसे कि 1000 का नोट है, एक बच्चे को आप बताते हैं ये 1000 का नोट है बेटा, तो वो सुन लेगा, ये तत्व से नहीं जानता है तो फाड़ भी देगा। लेकिन आप तत्व से जानते हैं 1000 का नोट है, आप नहीं फाड़ेंगे, तो आप तत्व से जानते हैं। तो इसी प्रकार से तत्व से कोई कृष्ण तत्व को जानता है, जन्म कर्म कृष्ण जन्म कर्म कितने दिव्य हैं, तो उसको आस्वादन मिलता है, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता है, वो उसका जो है आदि हो जाता है, वो उसके बिना रह नहीं सकता है। तत्व से जो जो जानता है तो उसको रस मिलता है, तो भगवान के जन्म और कर्म में ही उसको रस मिलता है, दूसरी बातों में उसको रस नहीं मिलता। तत्व से जानने का मतलब है अनुभव करना। तो आपने दूध पिया है, पानी पिया है, तो आपको स्वाद पता है, अंतर पता है, तो फिर आप जो है मतलब मांगे कि मुझे वो चाहिए, आपने रसगुल्ला खाया है तो आपको तत्व पता है, तो फिर आप जो है चाहेंगे रसगुल्ला खाना। उसी प्रकार से कोई तत्व से अगर जानता है, कृष्ण के तत्व को जानता है, तो फिर वो कृष्ण के इस जन्म और कर्म के रस का वो हमेशा आस्वादन करता है। श्री राधिका माधवेर अपारा माधुरी लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणास्वादन लोलोपश्य, जो तत्व से जानता है तो वंदे गुरु से चरणारविंदम, तो प्रतिक्षण आस्वादन लोलुप, तो प्रत्येक क्षण आस्वादन का लोलुप होता है। श्री राधा और माधव के गुण रूप नाम में जो है वो प्रतिक्षण आस्वादन करता है तो उसकी लोलुपता बढ़ती जाती है, लोलुप आस्वादन लोलुप। तो गुरु जो है तत्व से जानता है तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन हमेशा करता है, उसका लोलुप होता है, लोलुप लोभी लालची तो उसका लोभ बढ़ता है, उसका लालच बढ़ता है, जो तत्व से जानता है तो उसको लाभ होता है तो उसको लोभ होता है। आप तत्व से नहीं जानते हैं, आपको लाभ हुआ तो आपको लोभ नहीं हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है लेकिन लोभ नहीं हो रहा है क्योंकि आप तत्व से नहीं जानते। जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारता था तो उसको तत्व पता नहीं था उसको कितना लाभ हो रहा है, तो उसका बहुत लाभ हो रहा था लेकिन उसको लोभ नहीं था, लेकिन हाँ आसक्ति अपने पुत्र में थी इसलिए अपने पुत्र को नारायण पुकारता था, उसकी आसक्ति थी तो एक कारण उसकी, हालांकि भौतिक आसक्ति है अपने पुत्र के प्रति लेकिन वो आध्यात्मिक बन गई क्योंकि उसमें भगवान का नाम। तो जो तत्व से जानते हैं वो अजामिल की कथा बार बार सुनते हैं, बार बार सुनाते हैं, लेकिन अजामिल तत्व से नहीं जानता था लेकिन वो केवल एक पुत्र के कारण अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारता था तो वो भी एक कारण बन गया। जैसे माता यशोदा है तो कृष्ण में आसक्त हैं तो तत्व से नहीं जानते हैं लेकिन अपना पुत्र अपने पुत्र के प्रति उनकी आसक्ति है और पुत्र मानते हैं कृष्ण को, है ना, तो पूर्ण लाभ उनको पूर्ण लाभ हो रहा है अपने पुत्र के प्रति उनकी आसक्ति है तो पूरा लाभ हो रहा है उनको, और लोभ भी अपने पुत्र के प्रति उनका लोभ आसक्ति है। तो कोई भी कारण हो आप तत्व से ना जाने लेकिन तो भी अगर कृष्ण का भजन करते हैं तो आप को पूरा लाभ है। एक श्लोक है ना, यावान यश्चास्मि तत्त्वतः भजन तनन्य भावेन ते मे भक्ततमामता, उसमें भगवान कहते हैं कि तत्व से जो नहीं भी जानते हैं मुझको लेकिन मेरे अनन्य भाव से भजन करते हैं वे मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। भजन तनन्य भावेन ते मे भक्ततमामता, लेकिन तत्व से अगर आप जाने तो आप को जो है फिर बहुत सहायता मिलेगी क्योंकि आप फिर उसी को पकड़ेंगे क्योंकि आप तत्व से जानते हैं, ऐसे तत्व से जानने का बहुत लाभ है। तत्व से नहीं जानते हैं तो कोई कारण बन जाता है और कोई भगवान में आसक्त हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति तत्व से जानता है तो वो फिर जो है किसी भी हालत में वो छोड़ नहीं सकता, कहीं भी कोई भी कारण हो वो छोड़ेगा नहीं। इसी तत्व को जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने जो शब्द प्रयोग किया पश्यामी कि मैं देख रहा हूं, तो ब्रह्मा जी तो क्षीर सागर के तट पर हैं और बहुत से देवता भी हैं साथ, तो ब्रह्मा जी ने एक वचन का प्रयोग क्यों किया पश्यामि कि मैं देख रहा हूं? हाँ जी आप बताइए। तो ब्रह्मा जी केवल देख रहे हैं भगवान को, भगवान तो दर्शन दे रहे हैं, भगवान तो सबको दर्शन दे रहे हैं लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं और सब लोग नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं कौन बताएगा? हाँ जी आप, भक्ति की आज्ञा है ब्रह्मा जी के पास इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को देख रहे हैं और सब देवता नहीं देख रहे हैं, तो भगवान प्रकाश में अपने को छिपा रहे हैं और हम लोग छिपते हैं तो कहां जाते हैं? अंधेरे में जाते हैं, हम लोग अपने को छिपाने के लिए अंधेरे में जाते हैं लेकिन भगवान अपने को छिपाते हैं किसमें? प्रकाश के अंदर, इसलिए जो नास्तिक लोग हैं बहुत तपस्या करते हैं तो उनको लाइट दिखाई देती है और वो उसी का ही साक्षात्कार करते हैं और उनका नारा होता है गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, तो उनको इतना ही जो है साक्षात्कार होता है। ठीक है, धन्यवाद। किरंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव गौर निताई कृष्ण बलराम की जय।